आज की बात। श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में जीडीपी में आने वाली गिरावट और नोटबंदी के प्रभावों के बारे में, जो इस समय भारत में विशेष रूप से चर्चा में है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी दर 5.7% हो गई है। इस तरह जीडीपी में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई, जिसे काफी चिंताजनक कहा जा रहा है। यहां तक कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि जीडीपी की दर का वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 5.7% तक पहुंचना चिंता की बात है और इससे अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां उत्पन्न होंगी।
To 5.7%, and it's quite obvious that it therefore throws up a challenge for the economy, that in the coming quarters we really require to, both in terms of policy and investment, to work more to improve upon these figures.
अरुण जेटली का कहना था कि आने वाली तिमाहियों में नीतियों और पूंजी निवेश दोनों स्तर पर काम करना होगा, ताकि जीडीपी के आंकड़ों को बेहतर बनाया जा सके। आर्थिक मामलों के जानकारों को इस स्थिति से गहरी चिंता है। दूसरी ओर, नोटबंदी की उपयोगिता को लेकर एक बहस उस समय फिर तेज हो गई है, जब भारत के रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि 1000 और 500 रुपए के 99% नोट वापस आ चुके हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि आरबीआई को 16000 करोड़ का फायदा हुआ और नए नोट छापने में 21000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। चिदम्बरम ने तंज करते हुए कहा कि जिन विशेषज्ञों ने नोटबंदी की सिफारिश की, उन्हें नोबल अवार्ड दिया जाना चाहिए। आरबीआई के आंकड़े आ जाने के बाद नोटबंदी को पूरी तरह फेल माना जा रहा है, क्योंकि केवल 1% नोट ही वापस नहीं आए। कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी वास्तव में एक बड़ा घोटाला है। आम आदमी पार्टी ने भी नोटबंदी को बहुत बड़ा घोटाला बताया और आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने वित्त मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है
कि ये जो मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाने वाली सरकार है, दरअसल इनके द्वारा छापा जाने वाला नोट भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ आंकड़े बोले जाते हैं जो निरा झूठ है और सत्यापित है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि नोटबंदी पर सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं जो इसका मतलब समझते ही नहीं। लेकिन अरुण जेटली की ये बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि नोटबंदी पर सवाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उठाए थे और इसके प्रभाव के बारे में कहा था कि इससे जीडीपी 2% तक गिर जाएगी, और वर्तमान आंकड़े से डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी पूर्ण रूप से सही प्रतीत होती है।
What has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. This alone, I think, enough to condemn what has been done in the name of greater good for the people in the world. And, sir, I would further like to point out that, in my opinion, this scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2% points as a result of what has been done.
डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वो महान अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई ऊंचाई दिलाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आज़ाद करके विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जो कदम उठाए उसके नतीजे में 4-5% के आसपास रहने वाली आर्थिक विकास दर 8% तक जा पहुँची थी। वर्तमान सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में बड़े लक्ष्यों के तहत नोटबंदी की थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए की।
8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। काले धन और जाली नोट कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे।
इस नोटबंदी के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। विपक्ष सहित कुछ गलियारों का कहना है कि नोटबंदी के चलते 100 से अधिक जानें चली गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक क्षेत्र में किए गए अपने बड़े फैसले से आश्वस्त थे और उनको लग रहा था कि उनकी योजना कामयाब हो रही है।
घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है।
लेकिन फिर जब परेशानियां बढ़ती गईं, तो सरकार को भी आभास हुआ। प्रधानमंत्री ने जनता से 50 दिन का समय मांगा।
भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की और कुछ आंकड़े भी पेश किए।
अभी जो रिसर्च हुआ है, करीब 3 लाख करोड़ रुपया ये सरकार ने रिसर्च नहीं किया है, बाहर के एक्सपर्ट ने किया है। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है।
वरिष्ठ और प्रख्यात पत्रकार विनोद दुआ सरकार के इस फैसले को पूरी तरह नाकाम मानते हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए।
इतना ही कहेंगे कि जिस शान से और जिस स्टेट्समैन की तरह आपने ये ऐलान किया था कि नोटबंदी होने जा रही है और देश को सिर्फ 3.5 घंटे दिए थे, अब शान से तो नहीं आप कह सकते, विनम्रता से दोबारा टेलीविज़न पर आइए और देश से माफ़ी मांगिए। देश से माफ़ी मांगिए, उन लोगों से माफ़ी मांगिए जिनको 2-2, 3-3 दिन लाइनों में अपने पैसे के लिए खड़ा रहना पड़ा, जो मजबूर हुए, जो दुखी हुए, जिनके घरों के काम रुके, उन लोगों से माफ़ी मांगिए जिनकी नौकरियां गईं, करोड़ों नौकरियां गई हैं, उन लोगों से माफ़ी मांगिए जिनके बिजनेस ठप हुए हैं, उन लोगों से माफ़ी मांगिए जिनकी फैक्ट्रियां चाहे छोटी हों, चाहे वो माइक्रो हों, चाहे वो मंझोली हों, बंद हुई हैं, उन लोगों से माफ़ी मांगिए जिनकी तनख्वाहें कम हुई।
बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं विवेक कौल। उन्होंने NDTV इंडिया के प्राइम टाइम कार्यक्रम में बातचीत के दौरान विस्तार से अपने विचार रखे और सरकार के फैसले की आलोचना की।
पहली बात तो ये है कि जब 8 नवंबर का आप जो प्रधानमंत्री ने जो दूरदर्शन पे जो देश को एड्रेस किया, अगर उसको हम लोग ध्यान से सुने तो उसमें डिजिटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। डिजिटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार जो है 27 नवंबर की जो मन की बात में जो प्रधानमंत्री ने देश से बात की उसमें पहली बार जो है कैशलेस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे क्योंकि 27 नवंबर तक काफी पैसा वापस आ चुका था तो तब सरकार को समझ में आ गया कि ये ब्लैक मनी और फेक नोट वाला जो आइडिया था ये तो चल नहीं रहा, तो उन्होंने फिर एक नया ये आइडिया खड़ा किया कैशलेस सोसाइटी का। तो लेकिन अगर आप डिजिटाइजेशन का भी डेटा देखेंगे तो कैशलेस का, डिजिटाइजेशन का नहीं क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं, तो अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस का भी डेटा देखेंगे और अगर आप सालों साल का डेटा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिमोनिटाइजेशन के बगैर भी जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस हर साल धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे। और तो कैशलेस पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और अगर हम डिमोनिटाइजेशन नहीं भी करते तो कैशलेस जो है मतलब साल छह महीने देर से ही होता पर हो जरूर जाता। सवाल ये है कि इतना जो मतलब जो आर्थिक व्यवस्था का नुकसान हुआ है तो क्या वो मतलब किसी तरह से अवॉइड किया जा सकता था?
प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार ने भी दिवायर के कार्यक्रम में नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह नाकाम करार दिया।
ये क्योंकि इतना एम्बैरेसिंग फैक्ट है कि आपने इतना बड़ा कदम लिया और इस वजह से इतने लोगों को परेशानी हुई और लोग जो लाइनों में मरे, इसका मतलब ये हुआ कि आप सब तरह से फेल हो गए, तो ये एडमिट नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये कि अगर 99% पैसा वापस आ गया है, अभी हमको पता है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है जो बैंक्स हैं उनमें 8,000 करोड़ रुपया पैसा पड़ा हुआ, फिर नेपाल में है, भूटान में है, दुबई में है, यानी कि जितना पैसा आना चाहिए था लगता है 15.44 लाख करोड़, उससे ज्यादा ही वापस आ गया। अगर ये उससे ज्यादा पैसा वापस आ गया है तो इसका मतलब है कि जो काउंटरफीट करेंसी थी वो भी एक तरह से मतलब वापस आ गई है। इसमें ना तक काउंटरफीट करेंसी पे, क्योंकि अब ये कह रहे हैं 40 करोड़ काउंटरफीट करेंसी सिर्फ पकड़ी गई, जबकि लोगों का अनुमान है कि शायद 10 से 12 हजार करोड़ रुपए शायद काउंटरफीट करेंसी रही होगी। फिर उसी तरह टेररिज्म की बात हुई कि नॉर्थ ईस्ट में, और बाकी तो अटॉर्नी जनरल ने तो यहां तक कह दिया कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया वो इस्तेमाल करते हैं, अब तो सिर्फ 40 करोड़ रुपया निकला। अब पूरा पैसा वापस आ गया तो मतलब कि जो काउंटरफीट करेंसी पे नहीं असर हुआ और टेररिज्म पे असर नहीं हुआ। अच्छा, टेररिज्म की एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्ट में हो या जो कश्मीर वगैरह में हो वैसे ही चल रही है जैसे पहले की चल रही थी। तीनों जो गोल थे उनमें से कोई अभी फुलफिल नहीं हुआ। देखिए, डिजिटाइजेशन जो है यानी कि आपका सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ये तो आप बिना नोटबंदी के भी कर सकते थे, उसके लिए नोटबंदी की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए ये जो है, जो जब इन्होंने देखा कि नोट धड़ाधड़ वापस आ रहे हैं तब इन्होंने लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी की बात करनी। प्रधानमंत्री ने अपने 27 नवंबर की जो स्पीच थी, जो जनता से बातचीत करते हैं, उसमें भी इन्होंने कहा था, तो वो बाद में कहा। सवाल ये होता है कि जैसे कि नोटबंदी को करने के लिए इनको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। हमने देखा कितने सारे गड़बड़े हुए, बहुत सारे जो परेशानियां आई लोगों को, क्योंकि तैयारी नहीं थी। उसी तरह लेस कैश इकोनॉमी के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, वो तैयारी अभी है नहीं।
सरकार नोटबंदी के फैसले का अब भी बचाव कर रही है और आलोचक कड़ी आलोचनाएं कर रहे हैं। बार बार सरकार ही नहीं बल्कि RBI तक पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों का कहना है कि RBI की साख को धचका लगा है क्योंकि उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। विशेषज्ञों की बहसें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे ये विषय ऐसा है कि जनता खुद भी फैसला कर सकती है क्योंकि इस विषय का संबंध प्रत्यक्ष रूप से आम जनमानस के जीवन, रोजगार और क्रय शक्ति से है। We'll be right back.